हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राविया बुरी तरह थक चुकी थी। उसने आंखें छोटी करके अनंत को घूरते हुए कहा, सारा काम तो आप मुझसे करवा रहे हो और जब अनाहिदी पूछेंगी कि ये किसने किया तो सारा क्रेडिट खुद ले लोगे, तुम देखना। मैं अनाहिदी से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस एक उंगली उठा इधर से उधर घूम रहे थे, ये कर दो वो कर दो, ये लिख दो वो लिख दो, इसके अलावा तुम्हारे मुँह पर अलग शब्द भी नहीं आया है। अनंत ने एक उबासी लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे और तुम्हारी उस अनाहिदी से डरता हूँ? बोल देना जो बोलना है और फिलहाल वो करो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ज्यादा चूचा मत करो। क्या सुनकर राविया ने गुस्से में कहा, वो तो पता चल जाएगा। ठीक उसी वक्त अनाही अपनी लाल साड़ी का पल्लू संभालते हुए वहां आई और फिर उन दोनों के पास आकर बोली, क्या हुआ रवि, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अनंत जी पर सब कुछ ठीक है ना? राविया ने कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही अनंत ने राविया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वो भाभी जी क्या है ना कि थोड़ा थक गई हैं, इसलिए इसे गुस्सा आ रहा है। मैं अभी इसे बेंच पर बैठा देता हूँ और पानी पिला देता हूँ, उसके बाद ही शांत हो जाएगी। और आप बेफिक्र करिए, आपने पहली बार तो हमें कोई काम दिया है और आपका ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। वेदांत बोल रहा था कि आप दोनों को ऑफिस में जरूरी काम है, ये मैं संभाल लूंगा। राविया ने जल्दी से कहा, नहीं थी एक्चुअली। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अनंत उसे वहां से खींचते हुए दूसरी तरफ ले गया और अगले ही पल उसे बेंच पर बैठाकर उसके पर झुकते हुए बोला, खबरदार जो चुगली की। राविया ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो बड़ी गुंडागर्दी झाड़ रहे थे, अनाहिदी से डर नहीं लगता, अभी क्यों डर लग रहा है तुम्हें? अनंत ने घबराहट से सूखने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, नहीं मुझे उनसे डर नहीं लगता है, बस मैं उनकी थोड़ी इज्जत करता हूँ और मैं नहीं चाहता वो छोटी मोटी बातों पर अपना टाइम वेस्ट करें। राविया ने दूसरी तरफ चेहरा घुमाते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तुम्हें उनसे कितना डर लगता है और कितना नहीं। अनाही दूर से उन दोनों को बातें करते हुए देख रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं दोनों मियाँ बीवी के बीच अब कौन सी खिचड़ी पक रही है, पर मुझे विवाह से बात करनी है, मैं यहाँ ज्यादा वक्त नहीं लगा सकती हूँ। अनाही को वेदांत पर पूरा भरोसा था, पर उसके बावजूद उसे विवाह के लिए बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। हाँ ये बहुत अजीब था, उसे विवाह की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है तो इसमें अनाही को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और ना ही उसे घबराहट होनी चाहिए थी। फुसफुसाते कदमों से वापस अंदर कहीं और फिर किचन में जाकर विवाह के लिए चाय बनाई। उसने चाय के साथ दो टोस्ट रखे और फिर तेज कदमों से चलती हुई वेदांत के कमरे के सामने गई। उसने गहरी सांस लेते हुए दरवाजा खटखटाया। कमरे के अंदर बेड पर विवाह घुटनों तक की येलो कलर की फ्रॉक पहने बैठी थी और वो फ्रॉक उसे वेदांत ने पहनाई थी क्योंकि विवाह से पहनी नहीं जा रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राविया बुरी तरह थक चुकी थी। उसने आंखें छोटी करके अनंत को घूरते हुए कहा, सारा काम तो आप मुझसे करवा रहे हो और जब अनाहिदी पूछेंगी कि ये किसने किया तो सारा क्रेडिट खुद ले लोगे, तुम देखना। मैं अनाहिदी से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस एक उंगली उठा इधर से उधर घूम रहे थे, ये कर दो वो कर दो, ये लिख दो वो लिख दो, इसके अलावा तुम्हारे मुँह पर अलग शब्द भी नहीं आया है। अनंत ने एक उबासी लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे और तुम्हारी उस अनाहिदी से डरता हूँ? बोल देना जो बोलना है और फिलहाल वो करो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ज्यादा चूचा मत करो। क्या सुनकर राविया ने गुस्से में कहा, वो तो पता चल जाएगा। ठीक उसी वक्त अनाही अपनी लाल साड़ी का पल्लू संभालते हुए वहां आई और फिर उन दोनों के पास आकर बोली, क्या हुआ रवि, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अनंत जी पर सब कुछ ठीक है ना? राविया ने कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही अनंत ने राविया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वो भाभी जी क्या है ना कि थोड़ा थक गई है, इसलिए इसे गुस्सा आ रहा है, मैं अभी इसे बेंच पर बैठा देता हूँ और पानी पिला देता हूँ, उसके बाद ही शांत हो जाएगी। और आप बेफिक्र करिए, आपने पहली बार तो हमें कोई काम दिया है और आपका ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। वेदांत बोल रहा था कि आप दोनों को ऑफिस में जरूरी काम है, ये मैं संभाल लूंगा। राविया ने जल्दी से कहा, नहीं थी एक्चुअली। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अनंत उसे वहां से खींचते हुए दूसरी तरफ ले गया और अगले ही पल उसे बेंच पर बैठाकर उसके पर झुकते हुए बोला, खबरदार जो चुगली की। राविया ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो बड़ी गुंडागर्दी झाड़ रहे थे, अनाहिदी से डर नहीं लगता, अभी क्यों डर लग रहा है तुम्हें? अनंत ने घबराहट से सूखने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, नहीं, मुझे उनसे डर नहीं लगता है, बस मैं उनकी थोड़ी इज्जत करता हूँ और मैं नहीं चाहता वो छोटी मोटी बातों पर अपना टाइम वेस्ट करें। राविया ने दूसरी तरफ चेहरा घुमाते हुए कहा, हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि तुम्हें उनसे कितना डर लगता है और कितना नहीं। अनाही दूर से उन दोनों को बातें करते हुए देख रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं दोनों मियाँ बीवी के बीच अब कौन सी खिचड़ी पक रही है, पर मुझे विहा से बात करनी है, मैं यहाँ ज्यादा वक्त नहीं लगा सकती हूँ। अनाही को वेदांत पर पूरा भरोसा था, पर उसके बावजूद उसे विहा के लिए बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। हाँ, ये बहुत अजीब था, उसे विहा की शादीशुदा जिंदगी में दखलअंदाजी नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है तो इसमें अनाही को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और ना ही उसे घबराहट होनी चाहिए थी। फुसफुसाते कदमों से वापस अंदर कहीं और फिर किचन में जाकर विहा के लिए चाय बनाई। उसने चाय के साथ दो टोस्ट रखे और फिर तेज कदमों से चलती हुई वेदांत के कमरे के सामने गई। उसने गहरी सांस लेते हुए दरवाजा खटखटाया। कमरे के अंदर बेड पर विहा घुटनों तक की येलो कलर की फ्रॉक पहने बैठी थी और वो फ्रॉक उसे वेदांत ने पहनाई थी क्योंकि विहा से पहनी नहीं जा रही थी। शर्म से लाल चेहरे के साथ उसने जल्दी से कहा, इस वक्त कौन आया होगा? वेदांत ने उसका चेहरा अपने हाथों में थमा और फिर धीरे से उसका गाल चूमते हुए बोला, तुम घबराओ मत टोमैटो, जो भी है मैं देख लूंगा और मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवाना है, खाली पेट में तुम्हें पेन किलर नहीं दे सकता। विहा ने धीरे से पलकें झपकाई और फिर वेदांत देश कदमों से चलकर दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खोलते हुए सामने देखा और अनाही को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। अचानक ही उसे याद आया कि रात में उसने अनाही से क्या कहा था और ये याद करके उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। अनाही ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग वेदन जी, क्या विहा उठ चुकी है? मैं उसके लिए चाय और टोस्ट लेकर आई थी और आपके लिए भी आपकी फेवरेट कॉफी। वेदांत धारवे दरवाजे से साइड हट गया और फिर अनाही हाथों में ट्रे लिए कमरे के अंदर आ गई। उसने बेड पर बैठी विहा को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके पास गई। उसने वो ट्रे बेडसाइड टेबल पर रखते हुए विहा के बगल में बैठे हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों सर झुकाए बैठी हो? विहा ने अपनी भीगी पलकों को उठाकर अनाही की तरफ देखा। वही उसकी आंखों में आंसू देखकर अनाही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे बेबी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? विहा अगले ही पल उसके गले लगाते हुए रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर अनाही ने आगे बढ़ी करके वेदांत की तरफ देखा जो खुद ब्लीडिंग नजरों से उसे देख रहा था। अनाही ने विहा का सर सहलाते हुए कहा, अरे रोना बंद करो, पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है, तुम क्यों रो रही हो, क्या वेदांत सिंह ने तुमसे कुछ कहा है? विहा ने रोते हुए अपने पैर अनाही की गोद में रख लिए और अपने दोनों हाथ अनाही की कमर पर लपेटे हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। ये बहुत बुरा इंसान है, उसकी वजह से तुम मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। अब जाकर अनाही को पूरी बात समझ आई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर उसके बाल सहलाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी ना, तो तुम कैसे अकेले वेदांत जी को दोष दे सकती हो? और इसमें दोष देने जैसा भी कुछ नहीं है, तुम दोनों शादीशुदा हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दिन तो तुम्हें ये दर्द सहन करना ही था ना। विहा ने रोते हुए कहा, मुझे भी पता है कि वेदांत की कोई गलती नहीं है, पर मैं चाहती हूँ इस वक्त आप मेरी साइड लो और इसे बहुत बुरा भला कहो ताकि मेरे दिल को ठंडक मिले। मैं जब कोई दुख सुनाऊँ तो मुझे सामने से लॉजिक नहीं चाहिए होता, उसमें चाहती हूँ मेरे साथ वाला भी उसको बुरा भला बोले जिसको मैं बोल रही हूँ। ये सुनकर वेदांत और अनाही दोनों को ही हंसी आ गई। वेदांत ने जल्दी से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी टोमैटो, मेरी तरफ देखो और अनाही टोस्ट लेकर आई, चाय के साथ ये खाओ और उसके बाद पेन किलर ले लो, तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। अनाही ने वेदांत को देखकर झूठ मूठ के गुस्से के साथ कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तकलीफ देने की? आप एक नंबर के बदतमीज इंसान हो, बेशरम कहीं के। ये सुनकर विहा ने भाई के गले से अपना चेहरा निकालकर एक बार अनाही की तरफ देखा और एक बार वेदांत की तरफ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनाही सच में वेदांत को डांट रही है। वहीं वेदांत भी जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, सॉरी देवी जी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं उसके साथ जेंटल रहूंगा। अचानक ही अनाही की नज़र वेदांत के सीने पर गई, जिस पर चमकते लाल निशान दिख रहे थे। वेदांत ने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था और उन नेल स्क्रैचेस पर अभी तक अनाही की नज़रें नहीं गई थीं। उसने हैरानी से विहा की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से विहा का सर सहलाते हुए बोली, एक काम करो, चाय टोस्ट खा पी के टैबलेट ले लो और उसके बाद जब तुम ठीक हो जाओ तब वेदांत को भी ऑइंटमेंट लगा देना। और मुझे नहीं लगता वेदांत जी आज ऑफिस जाएंगे, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है तो मैं चलती हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर अनाही ने आगे बढ़कर विहा के फॉरहेड पर किस किया और फिर उसके पैर अपनी गोद से हटाते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। उसने वेदांत की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल पास की और फिर तेज कदमों से उनके कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही विहा ने रोते हुए कहा, हम सॉरी, मेरी वजह से दीदी ने भी आपको डांट लगा दी, पर सच में मुझे इतना दर्द हो रहा है ना, मैं बात नहीं सकती हूँ, मुझे बस रोना आ रहा है। वेदांत ने अपने
विहा ने सिसकते हुए ही वो दोनों टोस्ट खा लिए थे, जिसके बाद वेदांत ने अपनी कॉफी हाथ में लेते हुए उसकी एक घूंट भरकर कहा, टोमेटो, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये सब मॉम से मत शेयर कर देना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो, लेकिन मुझे शर्म आती है।